الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الانبیاء کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کلاس میں، آیت نمبر 788 جو ابھی تلاوت کی گئی ان کی ہم نے خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل کر لی تھی پچھلی کلاس میں، معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے. اب ہم معرف المسائل پڑھنا شروع کر رہے ہیں. تو ان معرف المسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وزن نون کے لفظ کو سمجھایا کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی معرفہ مسائل میں وہ پورا ترجمہ یا پورا یعنی ایک ایک آیت کی تفسیر نہیں فرماتے ہیں، بلکہ صرف کچھ خاص مقامات کے مسائل یا معرف بتاتے ہیں. جیسے یہاں پر اس کا جو ہے وہ یعنی لفظی معنی مفہوم سمجھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وزن نون، یہ حضرت یونس بن متا علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے سورہ یونس، سورہ انبیاء، پھر سورہ صافات اور سورہ نون میں ذکر فرمایا. یعنی ان چار مقامات کے اوپر انہی ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. کہیں ان کا اصل نام ذکر فرمایا ہے جیسے سورہ یونس، ٹھیک ہے، پوری سورت ہی ان کے نام کے اوپر ہے، اور کہیں ذنون یا صاحب حوت کے القاب سے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، نون اور حوت دونوں کے معنی مچھلی کے ہیں. ذو النون اور صاحب الحوت کا ترجمہ ہے مچھلی والا. ٹھیک ہے، ذو کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر والا. ٹھیک ہے، جیسے ذو العقل، ٹھیک ہے، ذو العقل کہیں گے عقل والا، یعنی وہ شخص جو کہ اپنی عقل کو استعمال بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، عقل والے تو سب ہیں، لیکن جو اپنی عقل کو صحیح کاموں میں استعمال کرتے ہیں نا، تو ان کو ذو العقل کہتے ہیں. اردو زبان میں ہم ذو العقل سے زیادہ واقف نہیں ہیں، لیکن ہم ذی عقل سے واقف ہیں. اردو میں اکثر کہتے ہیں نا ذی، یہ تو بڑا ذی عقل انسان ہے، یا ذی شعور زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، ذی شعور. یہ جو زی ہے نا، یہ اصل میں زو ہی کی ایک اور شکل ہے. ٹھیک ہے، ایک اور حالت کے اندر زو کو جو ہے وہ زی پڑھا جاتا ہے. تو زی عقل، زی شعور. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی لفظ زی جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی یہی ہے، والا. ٹھیک ہے، تو ذو النون اور ذو الحوت یہ مچھلی والا. ٹھیک ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو بے تقدیر الہی چند روز بطن ماہی میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا. یعنی مچھلی کے پیٹ میں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اور ماہی جو ہے یہ مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان کے اندر لفظ. تو اس میں رہنے کا واقعہ غریبہ، غریبہ سے یہاں پر مراد کیا؟ غریب اردو زبان میں تو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو غریب کہتے ہیں، مال دولت سے محروم. لیکن غریب کا جو لفظ عربی کا اصل لفظ ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے عجیب و غریب. رائٹ، عجیب و غریب کے معنی میں، جو کہ اردو میں بھی ہم عجیب و غریب استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک بہت ہی انوکھا واقعہ، ٹھیک ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کا کہ کوئی اور زمانے کے اندر نا اس کی یعنی کبھی اور ہوا نہیں ایسا واقعہ. ٹھیک ہے، تو عجیب و غریب اس قسم کا مفہوم بنتا ہے اس کا. تو عجیب و غریب واقعہ ان کا پیش آیا تھا، اس کی مناسبت سے ان کو ذنون بھی کہا جاتا ہے، اور صاحب الحوت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. صاحب اس کو کہتے ہیں جو کسی کی صحبت میں ہو. ٹھیک ہے، صحبت میں رہنے والا اس کو صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دوست کو بھی साहिब कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्त चूंकि एक दूसरे के सोहबत में रहते हैं, इस वजह से उनको एक दूसरे का साहिब कहा जाता है। तो ये चूंकि मछली की सोहबत में रहे थे, बहुत ज्यादा देर नहीं रहे थे, चंद दिन ही रहे थे, शायद 2-3 दिन गालबन, पता नहीं इसका एग्जैक्टली नहीं पता किसी को कितने दिन रहे थे। तो इस खसूसी सोहबत की वजह से ना इनको साहिबुल हूत, मछली की सोहबत में रहने वाला, ठीक है, हर वक्त नहीं रहते थे मछली की सोहबत में। किस्सा यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो जो वाकया है सूरह यूसुफ के अंदर, तो वहां पर उन लोगों को जो कि उनकी सोहबत में चंद दिन कैद खाने में रहे थे, तो उनके लिए भी साहिबी सिजन, ठीक है, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, कैद खाने के सोहबत वालों, जो मेरे साथ कैद खाने में रहे हो, उनके लिए साहिबी यानी मेरे सोहबत वाले कैद खाने के अंदर। बहरहाल तो साहिबुल हूत का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया है कुरान ने यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए। अब किस्सा यूनुस अलैहिस्सलाम क्या है, कैसे पहुंच गए वो मछली के पेट के अंदर, तो वो काफी तफसील से बयान फरमाते हैं कि तफसीर इब्ने कसीर को कोट करते हैं यहाँ पर। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, और तारीख इब्ने कसीर भी इनकी बड़ी मशहूर किताब है। इन दो किताबों की वजह से ये ज्यादा मशहूर हुए हैं। एक तो उनकी तफसीर इब्ने कसीर है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को इलाका मूसल की एक बस्ती नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया था। ये शाम के इलाके में एक जगह है, नैनवा उसको उसका नाम है, ठीक है, और इलाका जो ज्यादा बड़ा इलाका है वो मूसल का इलाका है। जैसे दमिश्क एक बहुत बड़ा शहर है, उसी तरह शाम के बड़े बड़े शहर, आजकल तो नाम मूसल जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर भी हुआ, क्योंकि जब शाम के अंदर जंग शुरू हुई तो मूसल के मुकाम के ऊपर बहुत ज्यादा यानी जंग के वाकयात वहां से सुनने को मिले। तो इलाका जो है वो मूसल है, गोया कि एक प्रोविंस होगा वहां का या कोई रीजन होगा मूसल, और उसके अंदर एक बस्ती है नैनवा, तो उसके लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको ईमान व अमल सालेह की दावत दी, उन्होंने तमर्रुद और सरकशी से काम लिया, यानी उन्होंने जो है ना वो रद कर दिया उनको, यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत को जो है वो रद्द कर दिया, और सरकशी यानी बड़ी बगावत कर दी, नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपको नहीं मानते, वो ऐसे जिस तरह से करते थे काफिर लोग। तो यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे नाराज होकर बस्ती से निकल गए और उनको कह दिया कि 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ठीक है। अब ये नाराज होकर ऐसे नहीं होता था कि नबी ने जो है वो अभी दावत का पैगाम दिया और लोगों ने मना कर दिया तो नाराज हो गए, लूट गए, जैसे हम लोग किसी से बात करें और आगे से जो है वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले तो हम लूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। नहीं, नबियों का ऐसा मामला नहीं था, बल्कि ये बहुत मेहनत और मुजाहिदा करते रहते थे और बड़े लंबे अरसे तक अपनी कौम को दावत देते रहते थे, फिर कोई ऐसा मुकाम आता था कि जिसमें ना अल्लाह ताला इनके इनको हुक्म फरमा देते थे या इनके दिल में ये बात डाल देते थे कि बस अब जो है ना इन लोगों ने बात नहीं माननी है या जो भी है रीजन, बस अब तुम यहाँ से निकल जाओ, अब हमारा अजाब आने वाला है, ठीक है। तो इनका इनका भी यही मामला हुआ कि जब ऐसा अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाल दिया तो ये फिर वहां से निकल गए और लोगों को ये कह के गए कि अब तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर निकल गए तो उनको फिक्र हुई कि अब अजाब आ ही जाएगा। किन लोगों को फिक्र हुई? बस्ती वालों को फिक्र हुई कि अब अजाब आ ही जाएगा, और बाज रवायात से मालूम होता है कि अजाब के बाज आसार का उनको मुशाहिदा भी हो गया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर गहरे बादल जो है ना वो दूर से नजर आने शुरू हो गए, ठीक है, तो उनको जो है ना खौफ होना शुरू हो गया कि जिस अजाब का वो कह के गए हैं ना तो वो अब आ रहा है, वो शुरू हो गया है। तो इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक ऐसा काम किया जो कि दुनिया की यानी जो माजी की अकवाम है उनमें से किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। ये वाहिद उम्मत है कि जिसने अजाब के आसार को देख करके जो है ना वो توبہ کر لی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نا اپنے شرک و کفر سے توبہ کی, اور کیسے توبہ کی وہ تفصیل اب بیان کر رہا ہے. یعنی توبہ کی صورت شکل کیسی تھی کہ بستی کے سب مرد عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے. ٹھیک ہے, یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے جو ہے نا وہ ایک غیر آباد جگہ, جنگل کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر درخت ہوں اور خوب جو ہے وہ سبزہ ہو اور جس طرح کے ہم اردو زبان میں جنگل کہتے ہیں, نہیں, جنگل سے مراد جو ہے وہ بیابان, جہاں پہ کہ رہائش کا انتظام نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ صحرا بھی ہو سکتا ہے, یہ پہاڑ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو ہے وہ کوئی درختوں والا جنگل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا سارے کے سارے ایسی جگہ پر نکل گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے, اور اپنے مویشی جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے, سب کو ساتھ لے کے گئے, اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, مویشیوں کے بچوں کو نا ان کی کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں مویشیوں کے بھی وہ اپنے ماؤں کے ساتھ ہی رہتے ہیں, بکری کے بچے اور گائے کے بچے بھینس کے بچے وغیرہ, اور باہر جا کر کے نا پھر سب نے گریا و زاری کرنا شروع کی, اور الہا و زاری کے ساتھ یعنی بہت ہی زیادہ یعنی رونے دھونے کے ساتھ اللہ تعالی سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے, جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل کیا. ٹھیک ہے, اب یہ جانور جو ہیں یہ تو توبہ نہیں کر رہے تھے, اسپیشلی جانوروں کے بچے, لیکن بیسیکلی کیا کر رہے تھے یہ کہ یہ ایک ماحول بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, کہ یہ توبہ تو گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے نا, یہ توبہ تو بستی کے اندر بھی ہو سکتی ہے, لیکن انسان کی طبیعت کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اطراف کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے اطراف کا اثر ہوتا ہے. اب یہ منفی اعتبار سے تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی برا ماحول ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ برائی ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اچھے ماحول کا اثر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جب چاروں طرف لوگ جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہو تو پھر انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا کام کریں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو جس اثر کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا, یہ ایک رونے دھونے کا ماحول, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جو اطراف کی آوازیں ہوتی ہیں نا, ان آوازوں کا جو ہے وہ بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی اجتماع میں جائیں, کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مل کر کے ایک اجتماعی دعا ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا دل جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہا بھائی کہ بھائی میں دعا کروں, مجھے اپنے دل کے اندر کوئی گناہوں پہ ندامت نہیں ہو رہی, کوئی جو ہے وہ فکر نہیں ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن جب چاروں طرف لوگ جو ہے نا وہ دعا میں رونا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اچھا خاصا جو ایک دم کیا کہتے ہیں ایسا دل جو کہ سل بنا ہوا تھا, رائٹ, سل بنا ہوا تھا یعنی پتھر کی سل, ٹھیک ہے, چاروں طرف کے رونے کے آوازیں سن کر کے نا اس کے دل کے اوپر بھی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کی طبیعت بنائی ہے, یہ طبیعت جو ہے نا پھر اپنے ماحول سے اثر لیتی ہے, تو اس قسم کا بھی ماحول میں جب معاملہ ہو جائے تو اس کا انسان کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے نا اس قسم کا ماحول جو ہے وہ کبھی 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 بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی مشائخ ہمارے جو ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اجتماعی شکل میں, جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے یا اس قسم کی جو دعا ہوتی ہے, تو اس وقت جو ہے نا وہ لائٹیں بند کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی لائٹیں بند کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو تھوڑا سا اندھیرے کا ایک ماحول ہوتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو نا فوکس کرنا آسان ہو جاتا ہے. روشنی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہوتی ہے, کہ ادھر دیکھ رہی ہے, ادھر دیکھ رہی ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, مختلف لوگوں کی شکلوں کو دیکھ رہی ہے کہ ہاں بھائی وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیسے دعا مانگ رہا ہے, اس نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں, ہے نا, ہر وقت ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. لائٹیں بند ہو گئیں, اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, اب جو ہے نا وہ چونکہ اب آپ نہیں ہو سکتے ڈسٹریکٹ, تو آٹومیٹکلی جو ہے نا پھر آپ کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ انر فوکسڈ بن جاتی ہے, اپنے اندر جو ہے نا وہ فوکس کرنے کی پھر کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے یہ ماحول بنانا جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कोई जरूरत नहीं है माहौल बनाने की, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, है ना। बंदा जो है वो अगर करना चाहे तो कहीं भी कर सकता है। बेशक ये एक अलग बात है कि जो बहुत कुव्वत इरादी के पक्के होते हैं, जो मजबूत तबीयत के लोग होते हैं, जिनका के कोई ना कोई बड़ा मोटिव मोटिवेशन बनी हुई होती है किसी वजह से, तो वो तो बुरे माहौल के अंदर भी कर लेते हैं, वो तो नासाजगार माहौल के अंदर भी जो करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। लेकिन हर एक की तबीयत ऐसी नहीं होती, अक्सर इंसानों की तबीयत जो होती है ना वो बहुत कमजोर होती है, तो उनको माहौल की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से माहौल बनाने की कोशिश करना ये बड़ी अहमियत रखता है इंसानी मुआशरे के अंदर, हर इंसानी मुआशरे के अंदर, ठीक है। इसी वजह से इनफरादी तौर पर अपनी यानी दीन के ऊपर चलने की मेहनत करना ये तो करना ही है, ठीक है, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में दीन के ऊपर चलने की मेहनत करना जो है ना ये भी बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दीन की तबलीग शुरू करी मक्का मुकरमा के अंदर, तो वो बड़ी इनफिरादी नौयत की मेहनत थी, लेकिन वो जो लोग थे ना वो बहुत ज्यादा मजबूत लोग थे मक्का मुकरमा के अंदर, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जैसे जैसे नए लोग दाखिल होना शुरू हुए, तो वैसे वैसे थोड़ा 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 माहौल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इवन मक्का मुकरमा के अंदर भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने दारो नदवा एक जगह थी वहां पर जो है वो मुलाकात करनी शुरू करी लोगों से, लोग आते थे एक ही जगह के ऊपर। एक सहाबी जिनका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, उनके घर के अंदर मिलना शुरू कर दिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा माहौल जो है वो वहां पर भी बनाना शुरू किया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब हिजरत शुरू हुई तो फिर मदीना मुनव्वरा में आकर के बड़े नौयत का जो है वो माहौल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जो बाकायदा एक इस्लामी रियासत बन गई वहां पर। तो ये सब काम जो है ना ये सारा का सारा जो है इसी वजह से है, क्योंकि इंसानी तबीयत को माहौल की जरूरत पड़ती है और इससे फायदा होता है, ठीक है। अब इसका तरीका जो है वो और बात है कि हर बंदा अपने तौर पे माहौल बनाना शुरू कर देगा तो उसमें फिर बहुत ज्यादा फसाद और शर का अंदेशा है, शैतान जो है वो उसके अंदर अपना अमल दखल कर लेता है। इस वजह से माहौल बनाने की जो मेहनत है ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक अमीर के मातहत जब होती है तभी ये सही तरीके से होती है और फसाद से महफूज रहती है, ठीक है। वो अलग बात है कि तरीका कैसा है माहौल बनाने का, लेकिन यहाँ पर उसूल की बात हो रही है कि माहौल की जरूरत है इंसानों को, ठीक है। तो अब इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि रोने धोने की आवाजें आ रही है, हत्ता कि जानवरों के रोने की आवाज, ठीक है ना। अब वो जानवर कोई अल्लाह के खौफ में नहीं रो रहे, जानवर कोई थोड़ी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं जो उनको अल्लाह के अजाब का खौफ, खैर अजाब का खौफ तो उन जानवरों को होता है, लेकिन यहाँ पर तो जानवरों के बच्चों की बात हो रही है, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया ना, क्योंकि वो माओ से दूर हो गए थे, वो तो इस वजह से रो रहे थे, लेकिन उनके रोने धोने की जो आवाजें थी उनका भी असर जो है वो इंसानों के दिलों के ऊपर पड़ रहा था, ठीक है। तो जानवरों के बच्चों ने जिनको उनकी माओ से अलग कर दिया गया था अलग शोर गुल किया, उनका शोर गुल जो है वही रोना धोना कहलाएगा। अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा और इल्हाव जारी को कबूल कर लिया और अजाब उनसे हटा दिया। अस्हाबे कहफ का वाकया सूरह कहफ के अंदर जो है ना, तो उसके अंदर भी जब अस्हाबे कहफ 300 साढ़े 300 साल 350 साल तक सो चुके थे ना, तो उस वक्त जो है जिस इलाके में उनका गार था तो उस इलाके का बादशाह जो है ना, 350 साल गुजरने के बाद उस इलाके का बादशाह जो है वो नेक परहेजगार मोमिन था, मोमिन क्योंकि अब वहां के लोग मुसलमान हो चुके थे बाहर के लोग, ठीक है। तो उनका जो बादशाह था ना उसको भी एक मौके पर अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआएं करने की जरूरत पेश आई, तो उसने भी जो है ना ऐसे नहीं कि अपने घर के अंदर बैठ के अपने बेडरूम के अंदर मुसल्ला बिछा करके दुआएं मांगी, बल्कि उसने क्या किया कि उसने राख के ढेर के ऊपर जहां पे राख पड़ी हुई थी, और यानी बेसिकली ऐसी जगह जहां पे कोई इंसान बैठना पसंद नहीं करता, उस बादशाह ने अपने बादशाह वाले जो कपड़े होते थे, ठीक है, जो स्पेशल ऑर्नामेंटेड किस्म के कपड़े होते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ ये बंदा जो है वो बादशाह है, ठीक है, उसने उन कपड़ों को उतारा, उसने फटे पुराने कपड़े पहने, अपने सर पर से ताज उतारा, ठीक है, और जो नंगा सर था उसका उस हालत में वो राख के ढेर के ऊपर बैठ करके उसने अल्लाह ताला से रो रो करके दुआएं मांगनी शुरू कर, ठीक है ना। अब ये रो रो करके दुआएं मांगने के लिए जाहिर क्या जरूरत थी इन सबको करने की, लेकिन उसने किया, ठीक है, क्योंकि इंसानी तबीयत के ऊपर इस तरह का जो माहौल होता है उसका असर पड़ता है। और अल्लाह ताला को ना ये जो जाहिरी यानी एफर्ट है ना, जाहिरी एफर्ट, अल्लाह ताला को ये जाहिरी एफर्ट भी पसंद आती है, ठीक है। जैसे कि एक हदीस मुबारक का मजमून है कि कुरान पढ़ते हुए अगर तुम्हें रोना ना आए, जैसे कोई अजाब की आयत है, कोई ऐसी जो है वो वईद वाली बात है, उसके ऊपर अगर तुम्हें रोना ना आए ना, तो तुम रोने की सूरत बनाने की कोशिश करो, जाहिरी तौर पर अपने आप को गोया के जैसे इंड्यूस करने की कोशिश करो रोने को, ठीक है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, अच्छा, अल्लाह ताला ने फिर ना इस इल्हाउजारी से कबूल कर लिया और उनके ऊपर से अजाब को हटा दिया। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस इंतजार में रहे कि कौम पर अजाब आ रहा है, वो हराक हो गई होगी, ठीक है। जब उनको ये पता चला कि अजाब नहीं आया और कौम सही सालिम अपनी जगह है, तो उनको ये फिक्र लाहित हुई कि अब मैं झूठा समझा जाऊंगा, और बाज रिवायात में है कि उनकी कौम में ये रस्म जारी थी कि किसी का झूठा होना साबित हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता था, ठीक है। यानी अजीब कौम थी, ठीक है, कि उनके यहाँ ये दस्तूर था, ये रिवाज था, रस्म थी, जो भी कहें इसको, ये कानून था उनको उस कौम का अपना, ठीक है, कि झूठा साबित होने पे बंदे को कत्ल कर दिया जाता। इसका क्या मतलब है कि वो कौम जो थी वो काफिर थे, राइट, बुतों की परस्तिश करते थे, नबी की बात नहीं मानते थे, लेकिन झूठ बोलना उनके नजदीक काबिल कबूल नहीं था। झूठ बोलते नहीं थे, नबी को झूठा कहते थे या नबी की बात नहीं मानते, ये भी तो हो सकता है कि खैर छोड़े कि नबी की बात नहीं मान रहे है ना, उनकी बात का इनकार कर रहे, लेकिन तो अपने दुनियावी मामलात के अंदर अगर कोई झूठ बोल दे तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का झूठा होना साबित हो जाए तो उसको कत्ल कर देते हैं। अब जाहिर है कि एक दूसरे को हर वक्त कत्ल तो नहीं करते रहते होंगे ना, यानी लोग झूठ नहीं बोलते होंगे, तभी तो हर बंदे को कत्ल नहीं किया जा रहा होता था, ठीक है, वरना सारी कत्ल करके, हमारे जैसे अगर पाकिस्तान में ये वाला दस्तूर हो कि झूठे को कत्ल कर दिया जाए, तो फिर तो कोई बचा ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, इल्ला माशाल्लाह कोई अल्लाह का वली बच जाएगा, राइट। तो उनके ऐसा दस्तूर था, तो इससे ना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी जान का भी खतरा लाइफ हो गया, कि उन्होंने ना एक 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 ऐसे मामले के ऊपर कि दुनियावी एतबार से उन्होंने कहा था ना कि जी अजाब आएगा और तुम हलाक हो जाओगे, ठीक है, तो इस मामले के ऊपर जो है ना, उनको फिर ये हुआ कि मैं तो उनको कह के आ गया था कि अब तुम्हारे ऊपर अजाब आ रहा है और तुम हलाक हो जाओगे, ठीक है, और ये नहीं हुआ। यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझे कि अजाब आया ही नहीं, ठीक है ना, हालांकि अजाब आया था, ये लोग आसार देख करके तौबा करना शुरू हो गए थे, इस वजह से अजाब टल गया। ये तफसील यूनुस अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं चली, ठीक है ना, नबी आलिमुल गैब नहीं होते, ठीक है, जो खबर अल्लाह दे रहे हैं तो नबी को पता चल रही है, जो नहीं दे रहे वो नबी को नहीं पता चल रही, ठीक है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को ये खबर नहीं दी अल्लाह ताला ने कि अजाब टल गया, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना उनको ये फिक्र हुई जब पता लगा कि कौम तो बाकी है, जिंदा है, अजाब जो है वो नहीं आया उनके ऊपर, जब भी तो जिंदा है, अगर अल्लाह का अजाब आता तो फिर कोई थोड़ी बच सकता उससे, ठीक है, कोई नहीं बच सकता उससे। तो फिर ना उनको इस दस्तूर के तहत जो है वो अपनी जान का भी खतरा लायक हो गया कि तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में वापस जाने का फैसला कर लिया, तो सॉरी, अपनी कौम में वापस जाने के बजाय किसी दूसरी जगह को हिजरत करने की कसद से सफर इख्तियार कर लिया, रास्ते में दरिया था, दरिया से मुराद यहाँ पर लगता है कि मैंने दरिया का जो लफ्ज है ना क्लासिकल उर्दू के अंदर समंदर के लिए भी बोला जाता है, ठीक है, तो रास्ते में जो है वो समंदर था, ठीक है, तो उसको अबूर करने के लिए एक कश्ती में सवार, यानी समंदर इस तरह का होगा कि जैसे कि बे होता है, पर्शियन गल्फ है, या बहिरा अहमर है, रेड सी, ठीक है, तो रेड सी जो है वो ये कोई दरिया नहीं है, ये सी है बाकायदा, ठीक है, लेकिन उसके एक किनारे और दूसरे किनारे के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो आप कश्ती के ऊपर बैठ करके एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं। पैसिफिक ओशन को उबूर करने की कोई कोशिश करेगा तो जाहिर है वो तो ऐसा नहीं होता कि पैसिफिक ओशन के एक कोने किनारे में कश्ती में बैठे हो दूसरे किनारे में उतर गए, लेकिन पर्शियन गल्फ में या अरेबियन गल्फ जिसको कहना चाहते हैं अरब लोग, तो उसमें तो आप ऐसा कर सकते हैं ना। तो एक कश्ती में सवार हुए और वो कश्ती दूसरी तरफ जा रही, तो इत्तेफाक से ना, इत्तेफाक से मुराद यहाँ पर अल्लाह की मर्जी क्या हुई कि कश्ती ऐसे गर्दाब में फंसी कि गर्क होने का खतरा गायब हो गया, ठीक है, जैसे डूब जाएगी। मल्लाहों ने यह तय किया, यानी पानी में या तो तूफान आ गया, कोई इस किस्म का जो है वो गर्दाब कहते हैं कि जहां पे पानी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, घूमना शुरू हो जाता है और वो अपनी चीजों को जो भी ऊपर होती है ना उनको सक कर लेता है नीचे, ठीक है। तो इस किस्म का कोई मामला पेश आ गया कि कश्ती जो है ना वो डूबने के करीब हो गई, तो जो कश्ती चलाने वाले थे मल्लाह तो मल्लाहों ने यह तय किया कि कश्ती में सवार लोगों में से एक को दरिया में डाल दिया जाए तो बाकी लोग जरताबी से महफूज रह सकेंगे। अब ये जो कश्ती वाले थे ना, ये ईमान वाले थे, ठीक है, और ये ऐसे ईमान वाले थे कि जब इनके ऊपर मुसीबत आती थी तो इनको यकीन हो जाता था ये हमारे किसी गुनाह की वजह से, ये अल्लाह की मर्जी से आई है मुसीबत, ये ऐसे ही नहीं आ सकती मुसीबत, अल्लाह की मर्जी से आई है, ठीक है ना, और यकीनन हमारा कोई गुनाह होगा जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये ऐसे थे कि फौरन इनकी नजर अल्लाह पे गई कि अल्लाह की मर्जी से हुआ है ये जो कुछ हो रहा है, और दूसरी नजर अपने गुनाहों की तरफ गई कि हमारे गुनाहों की वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम में से किसने इतना बड़ा वाला गुनाह किया है कि इस किस्म का जो है ना वो मुसीबत में हम फंस गए, ठीक है। तो इनके दिल में आया कि यकीनन हम में से किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया है, कोई ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से जो है ना वो हमारी कश्ती गर्दाब में फंस गई है, ठीक है। तो अगर हम उस बंदे को जिसने ये गुनाह किया ना उसको अगर हम यहाँ से निकाल दें कश्ती से, तो फिर बाकी लोग बच जाएंगे। इस काम के लिए कश्ती वालों के नाम पर कुरानदाजी की, यानी इतना टाइम था इनके पास कि माशाल्लाह आराम से कुरान निकाल रहे हैं, ठीक है। कुरान निकालने का मतलब क्या कि जैसे मिसाल के तौर पर एक तरीका इसका ये हो सकता है कि बहुत सारे कागज की पर्चियां बनाए और हर पर्ची के ऊपर जो है वो किसी किसी यानी एक एक बंदे का नाम लिख दें और फिर उनको जो है ना एक डब्बे के अंदर डाल दें, जैसे छोटे बच्चे इस किस्म के काम करते हैं, डब्बे में डाल दें सारे पर्ची सारी पर्चियां, फिर उसके बाद डब्बे को जाए वो थोड़ा सा आपने शेक किया और फिर हाथ डाल करके एक पर्ची को बाहर निकाल दिया उसके अंदर से, ठीक है ना। तो अब वो पर्ची उसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, तो ये पूरा निकल आया उसके नाम का, ठीक है ना। उस तरह और भी तीरों के जरिए से लोग पूरा निकालते थे कि कहीं तीर को किसी तरह घुमाते थे, फिर वो जिसकी डायरेक्शन में रुक जाता था तो होता था कि अच्छा भाई इसके नाम का पूरा निकल आया क्योंकि तीर जो है वो इसके डायरेक्शन में जा करके रुक गया है, ठीक है। तो कश्ती जो है वो व्हर्लपूल में फंसी हुई भी है और ये लोग जो है ना ये सारी डिस्कशन भी कर रहे हैं और पूरा भी निकाल रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा सिस्टम कर दिया कि टाइम भी था और मौत भी सामने नजर आ रही थी। तो इत्तेफाक से, अब हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बार बार लफ्ज इत्तेफाक इस्तेमाल कर रहे, ठीक है ना, इत्तेफाक से। लेकिन चूंकि ये अल्लाह के वली हैं, पता है हमें कि अल्लाह के वली, इतनी जबरदस्त तफसीर लिखी, इतना जबरदस्त उन्होंने जो है वो दीन की खिदमत करी, मदारिस बनाए और फतवे का काम किया और उलूम जो है वो लोगों को सिखाए और उनका माशाल्लाह यानी जो काम है वो अल्लाह ताला पूरी दुनिया में उसको फैला रहे हैं, आज तक फैला रहे हैं, इस वजह से हमें यकीन है इस बात के ऊपर कि वो अल्लाह के वली थे, ठीक है। अब वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इत्तेफाक से, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटली, ठीक है, कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से ये हो गया, ठीक है। तो हम इसका ये जवाब देंगे कि असल में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो लफ्ज इत्तेफाक जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इत्तेफाक से ये हो गया, इत्तेफाक से ये हो गया, उनका मतलब ये है कि अल्लाह की मर्जी से ये हो गया, लेकिन चूंकि उर्दू जुबान के अंदर लफ्ज इत्तेफाक इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्होंने मुहावरतन लफ्ज इत्तेफाक इस्तेमाल कर दिया है। मतलब उनका ये नहीं है कि रैंडमली या एक्सीडेंटली ये हो गया या कोइंसिडेंटली ये हो गया, उनका ये मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जो होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, कोइंसिडेंटली या रैंडमली को थोड़ी कोई चीजें होती है। तो हमारे मशायख तो हमें सिखाते हैं कि जी लफ्ज इत्तेफाक इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी से ऐसा हुआ या कुदरतन ऐसा हो गया। ठीक है, तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह को ये बात नहीं पता थी। भाई पता होगी, 100% उनको पता है, लेकिन मुहावरतन कोई लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है किसी लैंग्वेज के अंदर ना, तो उसको जो है वो इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक है, अब मुफ्ती शफी को देखते हुए हम ये कहेंगे कि इन्होंने इस वजह से नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि इनको ये पता नहीं था कि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है, बल्कि उर्दू जुबान के मुहावरे की वजह से उन्होंने इस्तेमाल कर दिया लफ्ज। ठीक है, तो अब ये ना कहें, कोई जहन में ये ना सोचे कि जी हमारे हजरत ने तो हमें मना किया था लफ्ज इत्तेफाक इस्तेमाल करने से, और ये देखो इतने बड़े मौलवी साहब इनको नहीं पता ये बात, जो हमारे हजरत को पता है इनको ये बात पता नहीं, तो इन्होंने जो है लफ्ज इत्तेफाक की इस्तेमाल कर लिया, ये बिल्कुल भी कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, क्योंकि हजरत अल्लाह के औलिया में से थे। तो इत्तेफाक से फिर इन्होंने लिखा है कि इत्तेफाक से पूरा जो है ना वो हजरत यूनुस अलैहि सलाम के नाम पर निकल आया। भाई अल्लाह की मर्जी से निकल रहा था वो यूनुस अलैहि सलाम के नाम पर। ठीक है, कश्ती वाले शायद उनकी बुजुर्गी से वाकिफ थे, यानी ईमान वालों की कश्ती, ईमान वाले ही तो नबी की बुजुर्गी से वाकिफ होते हैं, नबी को जो है वो इज्जत का मुकाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने ना यानी कहा कि नहीं, ये कुछ गलती हो गई है, हम दोबारा से कुरा डालते हैं। ठीक है, देखें इन कश्ती वालों को इस बात का एहसास था कि अल्लाह की मर्जी से होता है सब कुछ, तो गौर करने की बात है, गौर करना चाहिए इन चीजों के ऊपर। इनको इस बात का पता था कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, जबी तो तूफान के ऊपर जो है वो ये सोचना शुरू हो गए कि गुनाह की वजह से ये हुआ होगा। ठीक है ना, लेकिन अल्लाह के एक दोस्त के नाम पर जब कुरान निकल रहा है, जिसका कि क्या नतीजा है कि इसने गुनाह किया, ये है वो गुनाहगार, अब वहां पर क्या चीज, अदब, अदब जो है ना वहां पर आड़े आ गया कि नहीं हम इनको गुनाहगार नहीं कहेंगे, हम नहीं मानते कि गुनाहगार, ये कुछ गलती हो गई है, कुछ 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 मसला हो गया, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हालांकि सामने नजर आ रहा है कि कुरा डाल रहे हैं और कुरा उनके नाम निकल रहा है, लेकिन अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर रहे, अपनी निगाहों पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि एतमाद कर रहे हैं अल्लाह वाले पर, एतमाद कर रहे हैं। ठीक है ना, कितना बड़ा फर्क है हम में और उनमें। हमें किसी शेख का, किसी आलिम दीन का कोई गुनाह पता चल जाए, हमें ऐसा पक्का एतमाद होता है कि जो खबर हम तक पहुंची है बिल्कुल ठीक खबर होगी, ये वाकई गुनाहगार है, ये वाकई खताकार है, ये वाकई जो है वो झूठे हैं। हमें अपनी आंखों पे भरोसा, हमें अपने कानों पे भरोसा, हत्ता कि हमें तो अखबार पे भरोसा, कि अखबार में जो खबर आ गई है किसी शेख के बारे में, अखबार झूठा नहीं हो सकता, है ना। हत्ता के टीवी के ऊपर कोई नाउज बिल्ला आधी नंगी औरत आकर के खबरनामा पढ़ने पढ़ रही हो ना, है ना, और वो अपने खबरनामे के अंदर किसी अल्लाह वाले के बारे में कोई खबर बता दे, हमें उस बेहुदा बेशरम औरत के ऊपर भरोसा कि वो झूठ नहीं बोल सकती, वो सच बोल रही है टीवी के ऊपर बैठ करके, राइट। लेकिन हमें अल्लाह वालों पे भरोसा नहीं, हमें उलमा पे भरोसा नहीं, हमें मशायख के ऊपर भरोसा नहीं। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कि अखबारों पे भरोसा करते हैं और नाउज़ुबिल्लाह सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं, और हत्ता क्या हमारा दीन तो कह रहा है ये वाकया और इस किस्म के बेशुमार वाकया कि अखबार और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो दूर की बात, तुम अगर वाकये को अपनी निगाह से भी देख रहे हो ना, तो उसमें भी तुम शक करो कि नहीं मेरी निगाह गलत हो सकती है, मेरे कान गलत हो सकते हैं, मेरी आंखें गलत हो सकती हैं। काश के अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, लेकिन اس وقت معاملہ یہی ہے، عقل پرستی، اس کو یہ جو اپنی آنکھ پہ بھروسہ اپنی کان پہ بھروسہ، اس کو اصل میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عقل پرستی. میری عقل جو نتیجہ نکال رہی ہے نا، میں اس کو مانوں گا، میں اپنی عقل کے کنکلوژنز کو مانوں گا، ہے نا. بڑوں کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میری عقل. ٹھیک ہے، عقل پرستی جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا جو ہے نا، خصوصاً برے صغیر کے مسلمانوں کا، اور ان میں بھی خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کا. ان میں بھی کچھ اور بھی آپ تفصیص کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی آپ تفصیص کر سکتے ہیں مزید. ٹھیک ہے، عقل پرستی، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ایسے نہیں تھے، نینوا کے لوگ تو یا نینوا کے آس پڑوس کے لوگ تھے، یہ لوگ ملاح تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یونس علیہ السلام تو یہ تو بزرگ ہیں، تو ہمارا پورا غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گناہگار ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو دریا میں ڈالنے سے انکار کر دیا، اور دوبارہ پورا ڈالا، پھر بھی اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا. ٹھیک ہے، ان کو پھر بھی تعامل ہو، دوسری دفعہ بھی نہیں تسلیم کیا. حالانکہ ایک دفعہ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری دفعہ بھی اسی بندے کا نام آئے، لیکن پھر بھی تعامل کر رہے ہیں، نہیں 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 نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر تیسری مرتبہ قرآ ڈالا، پھر بھی انہی کا نام نکل آیا. ٹھیک ہے، اسی قرآن اندازی کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ان الفاظ سے آیا ہے، فساہما، یعنی تیروں سے انہوں نے عائش ہوئی. فساہما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیر سے قرآن اندازی کرنا. ٹھیک ہے، تو فساہما فکان من المدحضین. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن اندازی کری، بس انہی یونس علیہ السلام ہی اس قرآن میں متعین ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی تینوں دفعہ انہی کا نام آیا، اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا یونس علیہ السلام کو بھی کوئی پتہ ہوئے تھوڑی تھا کہ ان کا جو عمل ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ جب تیسری دفعہ انہی کا نام آ گیا تو وہ کھڑے ہو گئے خود سے. یعنی ان لوگوں نے، کشتی والوں نے ابھی بھی ان کو نہیں کہا کہ آپ برائے مہربانی آپ ذرا باہر نکل جائیں یہاں سے، نہیں، ابھی بھی انہوں نے نہیں کہا، بلکہ یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے اور اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر، یعنی سوئمنگ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جو آپ کے جو ایڈیشنل کپڑے ہوتے ہیں اتار دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، پانی میں ڈال دیا. ادھر حق تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا. بحر اخضر، تو ویسے سبز کو کہتے ہیں، پتہ نہیں بھوئی رہا سبز کون سا والا بھوئی رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن کسی دوسرے سمندر سے کسی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی فوراً یہاں پہنچ گئی. کما قالہ ابن مسعود، ابن مسعود سے یہ والا قول نقل کیا گیا، وہ مچھلی یہاں پہ تیزی سے آئی اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے گئی. اتنی بڑی مچھلی جو کہ یہ ڈیفینیٹلی کوئی ویل مچھلی کے قریب ہی ہو سکتی ہے، یا کوئی ویل شارک ٹائپ کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی مچھلی جو ہے نا یہ دریاؤں میں ہوتی نہیں، یعنی جو ریورز ہوتے ہیں ان میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو ہے وہ اوشنز میں ہوتی ہے. سارا معاملہ جو ہے وہ اوشن کے اندر ہی ہو رہا تھا. تو یہ وہاں پر آئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ ہدایت فرما دی تھی کہ نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان پہنچے نہ ہڈی کو، یہ تیری غذا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ تیرا پیٹ چند روز کے لیے ان کا قید خانہ ہے. ویل مچھلی تو اگر انلیس کہ وہ کلر ویل ہو، تو کلر ویل تو پھر گوشت کھاتی ہے، لیکن ادروائز جو بلو ویل اور اس طرح کی جو دوسری ویلز ہیں وہ تو ویسے بھی گوشت خور ہوتی نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو یعنی بیکٹیریا کھاتی ہیں بیسیکلی، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے نا اس کو وہ سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ کھا رہی ہوتی ہے، اسی طرح اس کا پیٹ بھر جاتا ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو اس نے بس نگل لیا یونس علیہ السلام. یہاں تک یہ سب واقعہ روایت اپنے کثیر میں ہے، بجز ان کلمات کے جو قوسین میں دیے گئے ہیں، وہ دوسری کتابوں سے لیے گئے ہیں. بریکٹس والے جو کلمات ہیں وہ دوسری کتابوں سے لیے واقعہ ابن کثیر. قرآن کریم کے اشارات اور بعض تصحیحات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا، اسی پر عذاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی. یہاں پر ہم روک دیتے ہیں، کلاس کا ٹائم تو مکمل ہو گیا اور یہ تو واقعہ ہے تو یہ اس طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو اگلی کلاس میں اس پہ کریں گے, اس پہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم.